पारिवारिक हिंसा पर बचाव करने वाले एडवोकेट्स चिंतित हैं कि इस कोविड-19 महामारी के बीच पारिवारिक हिंसा का सामना करने वाली उन महिलाओं के लिए एक हताशा की स्थिति बन गई है जो अस्थायी वीजा धारकों के आश्रित हैं, यानी जो टेम्परेरी वीजा होल्डर्स पर निर्भर करते हैं। उनके वीजा की स्थिति के कारण ये महिलाएं सामाजिक सेवाओं तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में सामान्य समय से 3 में से 10 महिलाएं जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं वो शारीरिक या यौन हिंसा से गुजरती हैं। विक्टोरिया के परिवार हिंसा के खिलाफ बहुसांस्कृतिक केंद्र इन टच इसकी प्रमुख मिकेल मॉरिस के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन से परिवारों ने भारी तनाव का अनुभव किया और इससे पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए कॉल्स में भी वृद्धि हुई है। वो कहती हैं कि उनके संगठन के द्विभाषी मामले के प्रबंधक और वकील सामान्य से अधिक तौर पर महिलाओं को सहायता प्रदान करने में व्यस्त रहे हैं।
Because of the sudden change in employment status for so many people, women on temporary visas lost their jobs, but they're not eligible for Centrelink and they're not eligible for a lot of stimulus packages that the federal government introduced. And so we've got a bunch of women who are experiencing family violence, who are in high need, they don't have access to income, and they're currently now in fear for their own safety, but fear of where they're going to get money for food and where they're going to get money to pay for the roof over their head.
इन टच में केस मैनेजर डॉक्टर रुचिता ने कहा कि शरणार्थी और प्रवासी पृष्ठभूमि की महिलाएं इस घरेलू हिंसा से जुड़ी शर्म और कलंक के कारण मदद लेने से हिचकती हैं। डॉक्टर रुचिका को चिंता है कि कई पीड़ित महिलाएं सीमित वित्तीय साधनों, देश की सीमाओं के बंद होने और अपने घर समुदाय से बहिष्कृत होने के डर के कारण अपने मूल देश वापस नहीं जा पा रही हैं। वो कहती हैं कि एक महिला पहले अपने 3 बच्चों के साथ पारिवारिक हिंसा से बचकर निकल आई, लेकिन बाद में क्योंकि उसके वित्तीय साधन बहुत ही सीमित थे, वो अपने बच्चों को लेकर वापस उसी हिंसक माहौल में लौट गई।
I think she has compromised on her safety, but she wasn't left with any choice.
In touch एक कानूनी केंद्र के साथ पारिवारिक हिंसा के लिए एकमात्र ऑस्ट्रेलियन बहुसांस्कृतिक सहायता एजेंसी है और यहाँ 2018 से 2019 तक लगभग 40% क्लाइंट्स अस्थायी वीजा पर थे। सुश्री मॉरिस का कहना है कि इन टच ने कोविड-19 की आड़ में अपराधियों में एक नया पैटर्न देखा। कम अंग्रेजी बोलने वाली कमजोर महिलाओं के पास लॉकडाउन के दौरान अपने एब्यूजर से ही जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता।
So that brings on a lot of need and a lot of anxiety from the individual woman who is just not feeling safe anywhere and anyhow from the physical and emotional and psychological threats previously, but the virus has added that extra layer.
सुश्री मॉरिस का कहना है कि विक्टोरिया में फैमिली वायलेंस में रॉयल कमीशन के बाद से फैमिली वायलेंस की परिभाषा विस्तृत हो गई है और इसमें अब पीड़िता के पति और परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक शोषण के अलावा अन्य दुर्व्यवहार भी शामिल हैं।
If a woman is experiencing feelings of unsafety for whatever reason, there's emotional, there's financial, there's psychological, there's sexual as well as physical. If they're feeling threatened for their lives or their children's lives, it means they're experiencing family violence and they can seek help.
इमिग्रेशन लॉयर नीलेश नंदन का कहना है कि अस्थायी वीजा पर एक पीड़िता जो हिंसक रिश्ते को छोड़ने का फैसला करती है उसे सामाजिक कार्यकर्ता, जीपी, मनोवैज्ञानिक और पुलिस द्वारा अपने केस के सपोर्ट के लिए किन्हीं 2 सपोर्ट्स की आवश्यकता होगी ताकि वो अपने आश्रित यानी डिपेंडेंट वीजा की स्थिति से बाहर निकलें और एब्यूजर से भी संबंध तोड़ सकें।
Certainly one thing is for them to go back, and that's difficult because of the lockdown laws of our country and the destination country. They need to advise immigration in terms of what the change of circumstances are if their relationship has ended. And of course, if they're in a family violent situation, they need to get out of that situation and become safe and to go to a refuge centre and speak to their GP and to start that conversation immediately.
कोरोना वायरस के दौरान घरेलू पारिवारिक और यौन हिंसा का सामना करने वाले पीड़ितों का समर्थन करने के लिए फेडरल सरकार ने 150 मिलियन डॉलर नामित किए हैं। सुश्री मॉरिस का कहना है कि अस्थायी वीजा पर कई महिलाओं के पास कामकाजी अधिकार सीमित हैं और वो अपने वीजा स्थिति के कारण बुनियादी सहायता, समुदाय या सामाजिक सेवाओं तक पहुंच नहीं पाती। स्वास्थ्य संकट के जवाब में इन टच ने अपने क्लाइंट्स को आपातकालीन खाद्य राहत पहुंचाने के लिए मेलबर्न में किनफोक के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है।
When the lockdown happened for COVID, we had a lot of clients who worked in the gig economy. So they were waitresses at restaurants or they were working in beauty salons. And those were the places that shut down overnight. And that is why these women's needs are so high.
About Tracy ki. Tracy, jo ki uska asli naam nahi hai, apne desh mein ek hinsak mahol se bachkar Australia mein ek naya jeevan shuru karne ke liye aayi. यहाँ उसका अस्थाई कार्य वीज़ा पर एक यूरोपियन साथी के साथ में प्रेम हुआ और वो उसी के वीज़ा पर निर्भर भी हो गई। ये संबंध लगभग 2 साल पहले टूट गया था जब ट्रेसी का पूर्व साथी एक ड्रग डीलर बन गया।
He kept texting me all the time. He wished I was dead and that he was going to punch me in the face if he saw me.
ये ट्रेसी अकेली नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि 4 में से 1 महिला ने 15 साल की उम्र के बाद से एक वर्तमान या अपने पूर्व साथी द्वारा भावात्मक शोषण का अनुभव किया है। ट्रेसी ने भी लगभग 2 वर्षों तक मानसिक तनाव सहन किया और ये उसके भय और चिंता का कारण बना। वो नॉर्दर्न टेरिटरी में कमज़ोर और विकलांग बच्चों के लिए एक देखभालकर्ता के रूप में कार्य करती है, जहां उसके जैसे कौशल वाले वर्कर्स का मिलना मुश्किल भी है। इस नौकरी पर 5 साल होने के बावजूद उसका एम्प्लॉयर ट्रेसी को वर्क वीज़ा पर स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा।
They said it was too expensive to sponsor me.
यानी ट्रेसी अपने पूर्व साथी के वीजा पर ही निर्भर रहती है और वो उसके दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है।
He's still selling drugs. He will probably get his visa, which is very unfair. There's nothing I can do to get myself out of this horrible situation.
इस संबंध में नंदन कहते हैं कि क्योंकि ट्रेसी एक विदेशी की पार्टनर थी, उसका एकमात्र विकल्प है कि वो अपने वीज़ा के लिए आवेदन करे। अब नंदन का कहना है कि अस्थायी वीज़ा पर कई महिलाएं अपने दुर्व्यवहार करने वाले साथियों को छोड़ने के बाद इसी तरह की दुर्दशा में फंस जाती हैं। यदि उसका साथी एक अस्थायी वीज़ा धारक है और कोई पीड़ित परिवार की हिंसा की रिपोर्ट करता है, तो अपराधी के खिलाफ स्वतंत्र आपराधिक कार्यवाही के अलावा पीड़ितों के लिए कोई राहत नहीं होती।
Extremely common. It gives the offending party in that relationship extreme unconscionable leverage.
2015 से 2016 में अस्थायी साथी पर 529 महिलाओं ने पारिवारिक हिंसा के प्रावधानों में स्थायी वीजा के लिए आवेदन किया और इसमें से 70% से अधिक सफल रहे। लेकिन दूसरी ओर नंदन का मानना है कि डिपेंडेंट वीज़ा पर पीड़ितों के लिए कोई सुरक्षा नेट नहीं है, क्योंकि माइग्रेंट एक्ट पार्टनर वीज़ा आवेदकों को ही प्राथमिकता देता है।
Dependence means they have got no pathway to permanent residency. They've got to jump off that visa, get onto another visa for which they might not be eligible or they must return. And that's particularly earth-shattering for temporary visa holding women in Australia.
तो नंदन के अनुसार अस्थायी वीजा पर महिलाओं के पास सीमित विकल्प हैं, क्योंकि एक अलग वीजा जैसे स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन करने के बाद उनके लिए नई समस्याएं आ जाती हैं।
A student visa means that they've got to be a genuine student and they've got to come up with the money to be able to enroll, or in the case where they've got to become the principal applicant in terms of a work visa, they've got to find an employer that's prepared to sponsor them. And that's really, really difficult at the best of times, particularly so in terms of COVID-19 times.
उन्होंने कहा कि हताश होकर आश्रित वीज़ा पर यानी डिपेंडेंट वीज़ा पर कई पीड़ित दूसरा वीज़ा आवेदन तो करते हैं, लेकिन सफलता की कोई संभावना नहीं होती।
And when they do that, it's problematic, not just for themselves, because at the end of the day, they won't get a visa grant, but also for everybody else in Australia who is making applications and who are having their applications delayed because there's such an avalanche of applications being made without prospects. Then it clogs up the tribunals and it clogs up the courts.
उधर मॉरिस का कहना है कि इन टच सरकार से वीजा स्थिति की परवाह किए बिना उन सभी महिलाओं को सुरक्षा और सपोर्ट सेवाओं देने के लिए कह रही है जो ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक हिंसा का अनुभव करती हैं. साथ ही वो पीड़ितों को भी कह रही हैं कि यदि स्थिति निराशाजनक दिखे तो मदद मांगने के लिए आगे बढ़ें.
And I understand how difficult it is, particularly if you're stuck at home with the perpetrator. But if you can contact our service or Safe Steps or 1800 Respect. Tell us when it's safe for us to call you and how it's safe to call you. That's the first step and we'll start moving forward from there.
In Touch के बारे में अधिक जानकारी के लिए intouch.org.au पर जाएं या उनके टोल फ्री नंबर 1-800-755-988 पर सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं यदि आप विक्टोरिया में रहते हैं. और राष्ट्रव्यापी समर्थन के लिए किसी भी समय 1-800-737-732 पर नेशनल सेक्सुअल असॉल्ट फैमिली एंड डोमेस्टिक वायलेंस काउंसलिंग लाइन 1800 रिस्पेक्ट से संपर्क करें. यदि आप व्यथित महसूस कर रहे हैं और आपको इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है तो दिन और रात के किसी भी समय बियॉन्ड ब्लू कोरोना वायरस 1-800-512-348 पर या लाइफलाइन पर 1-3-11-14 पर सहायता सेवा के लिए कॉल करें. अपनी ही भाषा में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए द मल्टीकल्चरल सेंटर फॉर विमेन्स हेल्थ को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक टोल फ्री नंबर 1-800-656-421 पर संपर्क करें. और यदि आपको अपनी भाषा में ही जानकारी की आवश्यकता है तो द्विभाषीय सेवा के लिए 131450 पर कॉल करें और अपने पसंदीदा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए कहें. और अगर आपको अपनी जान का ही खतरा है तो तुरंत 000 पर पुलिस को फ़ोन करें.